ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रिया के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
श्रोताओं नमस्कार। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंध के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच इस अवधि में प्रगाढ़ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं और विगत 41 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। आज इस कार्यक्रम में हम भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंध पर ही चर्चा करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा जी को। सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की यह ऐतिहासिक यात्रा हम कहें तो कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि 41 वर्ष में पहली यात्रा और वह भी दोनों देशों के बीच 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम कहें तो यह भी त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या देख रहे हैं आप?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस बात के लिए अब 10 सालों में उन्होंने यह बात काफी साफ कर दी है कि वो जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनको बारीकी से देखते हैं और जहां जहां उनकी यात्रा की आवश्यकता है वो वहीं काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने यह पाया कि भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा ऑस्ट्रिया जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र में 41 सालों से नहीं हुई है, तो इसको उन्होंने तोड़ा और ये यात्रा उन्होंने की। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसके पहले भी उन्होंने लिया है कि दूसरे देशों के साथ भी हो, जहां कोई नहीं गया, सालों साल दशकों नहीं गया, वहां वो गए और भारत की उन्होंने साख, भारत की मैत्री स्थापित की। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विजिट है और मुझे इससे नितांत हर्ष हो रहा है क्योंकि मैं वहां भारत का राजदूत रहा हूं पहले और मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रिया में भारत के लिए कितनी सद्भावना, कितनी गहरी समझ है और आदर है। और आज तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उस छवि को देखते हुए ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री की विजिट चल रही है वहां, वो इस बात का परिचायक है कि ऑस्ट्रिया की सरकार, वहां के लोग भारत के प्रधानमंत्री को वहां पाकर नितांत हर्षित हैं, खुश हैं और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काउंटर पार्ट कार्ल नेहावर ने भारत और ऑस्ट्रिया का जो द्विपक्षीय संबंध है इसको एक स्ट्रेटेजिक दिशा देने का निश्चय किया है। तो प्रधानमंत्री का जो प्रेस स्टेटमेंट था वो इस बात को भली तरह उजागर करता है कि कैसे जो भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध है वो मात्र व्यापार और निवेश पे ही सीमित नहीं है, जबकि व्यापार और निवेश इसके जो आंकड़े हैं वो भी बहुत सराहनीय है, पर वो चाहते हैं कि इसका एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हो। तो उस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए इसको उन्होंने संक्षिप्त में बताया और जिन क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में सहयोग हो सकता है और परस्पर फायदा हो सकता है, बढ़ सकते हैं परस्पर जो हित साधन होंगे, वो क्षेत्र हैं आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, चाहे वो एनर्जी से संबंधित हों और हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी हो, या वो कंप्यूटर से संबंधित हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, और स्टार्टअप्स के लिए एक पूरा कैनवस उन्होंने अनफोल्ड किया है।
श्रोताओं हम आपको यह जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहावर के साथ वियना के ऐतिहासिक सभागार में एक बैठक की और उन्होंने कई सारी जानकारियां दी दोनों देशों के पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध को देखते हुए। बहुत पुराना संबंध रहा है ऑस्ट्रिया का भारत के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे केवल आर्थिक कारोबार और निवेश ही नहीं बल्कि हम समग्रता में ऑस्ट्रिया के साथ मजबूत संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने भी कहा कि सामरिक रूप से इसे हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित क्षेत्रों, नई और उभरती प्रौद्योगिकी, फिनटेक, स्टार्टअप, नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय और ऑस्ट्रियाई कंपनियों के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। सर हम यहां ये समझना चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच आपने कहा कि जो कारोबारी आंकड़े हैं या जो कारोबारी गतिविधियां हैं वो निवेश हैं वो भी काफी आकर्षक और अच्छे हैं। यहां हम ये समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। दोनों देशों के बीच संबंध को देखते हुए भारत के लिए कैसे अवसर बनते आप देख रहे हैं?
जो बुनियादी ढांचा है उसके कई फलक हैं, जैसे रेलवे है तो रेलवे में भारत का ऑस्ट्रिया के साथ जो सहयोग है वो चला आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा स्पर्श देना चाहिए। फिर जो वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, और ये चीजें जो है आपकी जो बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं, क्योंकि हमारा जो अर्बन जो डेवलपमेंट है और जो अर्बन समस्याएं हैं उन सबका ये आज सोल्यूशन बहुत जरूरी है, और ऑस्ट्रिया ने इस क्षेत्र में काफी महारत हासिल की है, तो उसमें भी समझौते की बात है। दूसरी बात यह है कि जो क्रिटिकल आने वाले युग की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आज दुनिया जो है एक कस्प पे है कि एकदम नया सब कुछ बनने वाला है, और भारत इन सब चीजों के लिए सचेत है और जागृत है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन सब क्षेत्रों में काफी तेजी से और मुस्तैदी से काम हो रहा है। तो चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो और उनके बनाने की बात हो, उनकी डिजाइन की बात हो, उनके वेफर प्रोडक्शन की बात हो, इन सब चीजों में भारत लगा हुआ है, और ऑस्ट्रिया ने इस बात में भी भारत के साथ समझौते करने की और काम करने की इच्छा जाहिर की है। ये स्ट्रेटेजिक हैं, ये सामरिक हैं, दूरगामी हैं, इनके जो फल होंगे वो लंबे समय तक हमको हमेशा मदद करेंगे। और फिर उन्होंने स्टार्टअप्स की जो बात की है, इसमें ये बता दें कि जो ऑस्ट्रिया की 150 कंपनियां अब सब्सिडरीज, उनकी सब्सिडरीज इंडिया में हैं, और वो जो एक निश एरिया जिसको कहते हैं एक चुना हुआ एक क्षेत्र है उसको लेके उस पर सहयोग करते हैं, तो उनकी जो दृष्टि है, जो फोकस है वो बिल्कुल बारीकियों के साथ है, और इसलिए जो फल हैं वो मिलते हैं। इसलिए आप देखिए उनका निवेश $1 बिलियन से ज्यादा है और 800 मिलियन यूरो पहुंच गया है, और भारत का भी वहां जो निवेश है वो 1.2 बिलियन यूरो पहुंच गया है। ये छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, कोई वहां आबादी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी वहां पे जो प्रगति है और जो टेक्नोलॉजी की उनकी जो एक छवि है वो बहुत अच्छी है, तो भारत उनकी इस बात को समझता है, और इसलिए प्रधानमंत्री के इस यात्रा के दौरान इन क्षेत्रों पे तवज्जो दी गई है।
सर हम ये समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा और हरित क्षेत्र इन पर भी जोर दिया है, तो ये दोनों में कहां कहां, जैसे आपने हाइड्रोजन से जो ऊर्जा तैयार की जा सकती है, बिजली बन सकती है, उसकी ओर इशारा किया, वहां ये थोड़ा हम विस्तार से समझना चाहेंगे कि एक विकसित देश होने के नाते ऑस्ट्रिया से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम क्या हासिल कर सकते हैं, कहां आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं और हरित क्षेत्रों में भी।
हाँ, ये जो हरित क्षेत्र हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन वो आज दरकार है उसकी, और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो विधियां, जो टेक्निक्स हैं, उनमें जो ऊर्जा लगती है वो रिन्यूएबल ऊर्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोल पावर्ड उसमें हाइड्रोजन बनाएं, वो नहीं है। तो चाहे वो न्यूक्लियर से बने, चाहे वो हाइड्रो पावर से बने, तो हाइड्रो पावर से हाइड्रोजन बनाने की बात जो है उसमें ऑस्ट्रिया ने इस दिशा में प्रगति की हुई है। उनके यहां भी वो जो हाइड्रो पावर है वो बड़ा विकसित है, और जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो पावर, मतलब जो जल विद्युत है वो अलोंग द रिवर रूट है, मतलब बड़े बड़े डैम नहीं है बल्कि रिवर का जो फ्लो है उसको उपयोग में करते हुए विद्युत पैदा करते हैं। और इस तरह से अगर हाइड्रो पावर से अगर हम हाइड्रोजन बनाएं तो वो रिन्यूएबल भी होगी और ऊर्जा संचित होगी, तो ये क्षेत्र है, ये मुझे लगता है जो आगे ले जा सकता है। दूसरा यह है कि ऑस्ट्रिया में जो ऊर्जा है उसको उन्होंने, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके जो दूसरे हिस्से हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन में या अर्बन प्लानिंग में, इन सब चीजों में भी वो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। विंड पावर जो है उसको भी वहां काफी, आप अगर ऑस्ट्रिया जाएं, वियना जाएं, तो वहां पे ये विंड मिल्स हैं ये बाकायदा दिखाई देती हैं, और ये पिछले कई दशकों से चल रहा है, तो इसमें उनकी महारत बहुत अच्छी है। जो विंड मिल जो हमारे यहां बन रही है, जो विंड एनर्जी है, वो गुजरात में और वेस्ट में हमने काफी उसमें आगे प्रगति की है, तो इसमें एक तरह का तादात्म्य हो सकता है, एक तरह का परस्पर सहयोग हो सकता है। तो ये दो पहलू हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में कनेक्टेड हो सकते हैं।
चर्चा को हम सर थोड़ा सा और विस्तार देना चाहेंगे और चलना चाहेंगे संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग के कहां और कैसे अवसर बनते दिख रहे हैं आपको?
देखिए, संस्कृति के क्षेत्र में तो ऑस्ट्रिया यूरोप में संगीत का एक तरह से संगीत की राजधानी है। ऑस्ट्रिया में जो म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉल्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यूरोप में कहीं भी कोई उन हॉल्स में परफॉर्म करना अपनी एक श्लाघा की बात समझता है। उस ऑस्ट्रिया में जब ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय उपाध्याय, जो कि भारतीय मूल के हैं, वो वंदे मातरम कंडक्ट कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने देखा और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुआ, वो वंदे मातरम एक 50 स्ट्रांग जो कॉयर था उसने परफॉर्म किया और वो सब ऑस्ट्रियंस थे। तो ये जो एक तरह का तालमेल चल रहा है, ये शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा है, ये क्योंकि वो भारत की संस्कृति की गहराई को समझते हैं और उसके जो विभिन्न आयाम हैं वहां ऑस्ट्रिया में उनका बाकायदा अच्छी तरह से उसको भलीभांति वे लोग अनुभूत करते हैं। तो ये जो म्यूजिक का है ये बहुत अच्छा हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ, भारत के ICCR के साथ बड़े संबंध हो गए हैं। साथ ही में संस्कृति में दूसरी बात यह है कि जो हिस्टोरिकली जो इतिहास में हमारे जो ऑस्ट्रिया के साथ संबंध बने रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी में संस्कृत का एक विशेष डिपार्टमेंट है और वो 19वीं शताब्दी से चल रहा है और अब तो उसको उन्होंने काफी बढ़ा दिया है। तो वहां संस्कृत के ज्ञाता विद्वान हैं वहां, जो संस्कृत साहित्य को समझते हैं और संस्कृत के जरिए भारत की जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं उनको अच्छी तरह समझते हैं। तो उनका जो साउथ एशिया स्टडीज डिपार्टमेंट है वो भारत की संस्कृति के इतिहास को और भाषा संस्कृत को दोनों को अच्छी तरह उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं। ये एक बात हुई। तीसरी बात यह है कि भारतीय फिल्मों को वहां ऑस्ट्रिया में काफी लोकप्रिय हैं। वहां 2-3 सिनेमाघर हैं जहां ये फिल्में चलती हैं, दिखाई जाती हैं। फिर फिल्म जगत की शूटिंग वहां होती है, वहां पे हाल के जिस सालों में वहां शूटिंग के लिए भी लोग जाते हैं और वो जगह बहुत खूबसूरत है। वियना कहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा रहने लायक शहर है और उसके आसपास की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका बयान करना कठिन है जब तक आप खुद ना देखें। हमारी कुछ फिल्में वहां जाके शूट होती हैं, तो स्विट्जरलैंड ही नहीं बट ऑस्ट्रिया में भी फिल्मों की शूटिंग वगैरह हुई है। और जो भारतीय फिल्मों की एक विशेषता है कि उनमें एक तरह का जो डांस फॉर्म्स हैं, इतनी बड़ी संख्या में इतना ऑर्डरली वे में जो डांसेस बनाए जाते हैं वो उन लोगों को बहुत अपील करते हैं। और भारत के बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, उनको भी वहां पे बुलाने का उनका हमेशा प्रयास रहता है। फिर ग्रास में जो एक दक्षिण में शहर है वहां आयुर्वेद के लिए भी एक विश्वविद्यालय में वहां काम शुरू हुआ है, योग के लिए भी और भारतीय डांसेज हो, और ऑस्ट्रिया में इन सब चीजों के लिए इंटरेस्ट है, भारतीय संगीत के लिए, भारतीय क्लासिकल संगीत के लिए इंटरेस्ट है वहां के लोगों में, योगा के लिए इंटरेस्ट है। तो ये भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न आयाम हैं इनमें उनके साथ तालमेल है ऑस्ट्रिया के साथ।
जी सर, आपने हमें अद्भुत जानकारियां दी, महत्वपूर्ण जानकारियां दी। श्रोताओं, ऑस्ट्रिया के साथ भारत का संबंध अत्यंत प्राचीन है, 17वीं सदी से लेकर हमारा मैत्री संबंध बना हुआ है। वहां से विद्वान आते रहे हैं यहां और भारत के बारे में लिखते रहे हैं। यही कारण है कि योग और भारतीय संगीत जैसे विधाओं के प्रति, आयुर्वेद के प्रति वहां के लोगों में काफी सम्मान है और गहरी रुचि लेते हैं। श्रोताओं की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रिया के द्विपक्षीय संबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।